सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी इसराइल यात्रा के संबंध में इसराइल में भारत के राजदूत जितेंद्र पाल सिंह के साथ आकाशवाणी विशेष संवाददाता धीरज काकड़िया की बातचीत।
आज बात उस रिश्ते की जो विश्वास, तकनीक और सुरक्षा की मजबूत नींव पर खड़ा है, भारत और इसराइल की रणनीतिक साझेदारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ये 9 वर्षों में दूसरी इसराइल यात्रा है। याद कीजिए जुलाई 2017, जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऐतिहासिक यात्रा इसराइल की हुई और संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। ये सिर्फ एक कूटनीतिक शब्द नहीं था, बल्कि नई दिशा का ऐलान था। दोनों देशों के रिश्तों की सबसे मजबूत कड़ी है रक्षा और सुरक्षा सहयोग। नवंबर 2025 में रक्षा सचिव की इसराइल यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग पर महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। विज्ञान और तकनीक में भी साझेदारी दमदार है। स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंडिया इसराइल इंडस्ट्रियल इनोवेशन फंड यानी 14F नवाचार की कहानी लिख रहे हैं। खेती और जल प्रबंधन, ये वो क्षेत्र है जहां इसराइल की विशेषज्ञता और भारत की जरूरतें मिलती हैं। भारत और इसराइल I2U2 समूह यानी भारत, इसराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के सदस्य हैं, जो खाद्य सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी इसराइल दौरे को लेकर आकाशवाणी के विशेष संवाददाता धीरज एम काकड़िया ने इसराइल में भारत के राजदूत जितेंद्र पाल सिंह से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं ये बातचीत।
भारत के इसराइल में राजदूत श्री जेपी सिंह हमारे साथ अभी मौजूद है। सिंह साहब, आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
पहले मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब 2 दिन के दौरे पे यहाँ आ रहे हैं, 25 और 26 तारीख को। अभी भारत और इसराइल के संबंधों में क्या नए अध्याय जुड़ेंगे, क्या नए आयाम जुड़ेंगे?
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय दौरे पर इसराइल आ रहे हैं 25 और 26 फरवरी को। ये उनकी दूसरी यात्रा होगी इसराइल में। पहली यात्रा उनकी 2017 में थी। ये यात्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया और इसराइल के जो रिलेशंस हैं वो बड़े स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, और इन स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में हम काफी एरियाज में फोकस करते हैं। इस विजिट के दौरान वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू जी से मिलेंगे, यहाँ के राष्ट्रपति हर्जोग जी से मिलेंगे, और यहाँ की जो कनेसेट है, जिसको हम यहाँ पे हमारे इधर पार्लियामेंट बोलते हैं, यहाँ की कनेसेट को एड्रेस भी करेंगे। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इनके विजिट के, और विजिट के दौरान बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी साइन किए जाएंगे। हमारा जो फोकस एरिया है इस हमारे रिलेशन में, हमारा फोकस एरिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे है। जैसा आप जानते हैं कि इसराइल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, इनोवेशन में बहुत आगे है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत आगे है। सो जो क्रिटिकल और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इसमें बहुत सारा डिस्कशंस होएगा, और उसमें किस तरीके से आगे हमें बढ़ना है उसका एक रोड मैप, उसका एक खाचा स्वरूप तैयार किया जाएगा। ये हमारा फोकस एरिया होगा। उसमें जैसा आप जानते हैं कि इंडिया में हमने अभी प्रधानमंत्री की लीडरशिप में आर्टिफिशियल AI समिट की है। सो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर, इन सब चीजों पे बहुत सारी बातचीत होने वाली है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा हमारे और भी काफी एरियाज हैं जिसपे बहुत अच्छे हमारा कोऑपरेशन है। एग्रीकल्चर है, जैसे एग्रीकल्चर में दोनों देशों के बीच में बहुत ही ज्यादा कोऑपरेशन बढ़ चुका है। सेंटर ऑफ इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपने देखे होंगे, कम से कम 35 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आज इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं अलग अलग प्रदेशों में, और अब उसको कैसे और आगे बढ़ाना है। सो अब जो है हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइड में जा रहे हैं। एग्रीकल्चर में कैसे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम करें, और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि हम जो है ज्वाइंट रिसर्च कॉल्स, दोनों साइड थोड़ा सा बजट जोड़ेंगी और ज्वाइंट रिसर्च कॉल, जिससे वो स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप किया जाए दोनों कंट्रीज के बीच में, वो है। डिफेंस कोऑपरेशन में आगे ही हम बहुत सारा कुछ कर चुके हैं और आगे आगे बढ़ रहे हैं। सो ये सब मुद्दे होंगे, ये सब एरियाज होंगे जिस पे इस बार फोकस किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात हमारे रिलेशंस के बीच में ये है कि इंडिया और इसराइल जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, और वो बड़े नेचुरल दोस्त हैं। और जब मैं नेचुरल अलाइज की बात करता हूँ, नेचुरल दोस्त की बात करता हूँ, तो उसका मतलब ये है कि दोस्त वो होते हैं जो बुरे समय में एक दूसरे के साथ खड़े हो, जब भी कोई क्राइसिस आए तो एक दूसरे के साथ खड़े हो। ये दो देश ऐसे हैं कि जब भी क्राइसिस आता है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। सो ये हमारा संबंध है, और अब समय आ गया है कि हम इस रिश्ते को और भी आगे लेके जाएं।
जैसे आर्थिक और संरक्षण डिफेंस क्षेत्र में आपने सहकार की बात करी, नवंबर 2025 में फ्रेमवर्क ऑफ FTA दोनों तरह से सहमति बनी थी, अभी इस विजिट के दौरान आगे ले जाएगा और ट्रेड डील क्या एक फॉर्मल स्वरूप ले सकता है कि नहीं?
इकोनॉमिक और जो ट्रेड कोऑपरेशन है ये एक फोकस एरिया है इस विजिट का। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी अभी हाल ही में आए थे कुछ महीनों पहले, और जब वो आए थे उनके साथ बहुत बड़ा 70 लोग कम से कम बिजनेस डेलीगेशन आए थे। उस विजिट के दौरान हमने सीईओ फोरम की मीटिंग करी थी, बिजनेस फोरम की मीटिंग्स की थी। उसका पर्पस ये है कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाया जा सके। और अगर आप देखें तो ये दो देश ऐसे हैं कि आपस में कॉम्पिटिशन नहीं करते, कहीं भी हमारा कॉम्पिटिशन नहीं है, इनफैक्ट हमारी जो एक दूसरे को हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो उस विजिट के दौरान अभी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पे साइन किए गए हैं, और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि जैसा कि हम आपस में बात कर रहे हैं और दिल्ली में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में और इजरायली डेलीगेशन जो दिल्ली में गया हुआ है इनकी कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, दोनों डेलीगेशन एफटीए पे नेगोशिएशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो वो वहां पे डिस्कशन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की विजिट के दौरान इस मुद्दे पे डिस्कशन होगा, और ये माना जा सकता है कि हम जितना जल्दी हो उतना हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कंक्लूड कर लेना चाहिए।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जैसे आपने बताया भारत ने लीडरशिप लेके पूरे विश्व को एक राह दिखाया, मानव फॉर्मूला दिया हमारे प्रधानमंत्री ने, और यहाँ की सारी यूनिवर्सिटी में भी एक भारत कॉर्नर बन रहा है ताकि नवाचार को साझेदारी के रूप में आगे ले जा सके। इसके बारे में भारत और इजराइल में सहयोग की और क्या दिशाएं आप देखते हैं?
देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इजराइल जो है काफी आगे है और इंडिया ने बहुत बड़ी पहल की है। अभी जब जो हमारी समिट हुई थी, जो एआई समिट हुई थी इंडिया में, उसमें इजराइल की तरफ से बहुत बड़ा डेलीगेशन गया था एआई समिट में उसको अटेंड करने के लिए। सिमिलरली इनका जो कल्चर है, स्टार्टअप कल्चर है जो एआई के आगे है, उसी को हमने किस तरीके से हमारे जो स्टार्टअप कल्चर है उन दोनों को किस तरीके से जोड़ा जाए, उसका क्या माध्यम हो, उसका क्या स्वरूप हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पे भी डिस्कशन होगा। हम ये मानते हैं कि जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, किस तरीके से हम अपने लोगों के लिए यूज कर सकें, कैसे हम उसको बड़ा इंक्लूसिव बना सकें, कैसे पीपल सेंट्रिक बना सकें, किस तरीके से उसको हम एजुकेशन में यूज करें, हेल्थ में यूज करें, एग्रीकल्चर में यूज करें, सो ये हमारे लिए हमारा एम है और हमारा ये मकसद है कि किस तरीके से इजरायली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को एक साथ जोड़ा जा सके।
सिंह साहब, भारत और इजराइल दोनों ही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से सफर कर चुके हैं, विक्टिम बन चुके हैं। डिफेंस के क्षेत्र में और क्या गुंजाइश आप देखते हैं सहयोग की?
देखिए, डिफेंस के सेक्टर में काफी कोऑपरेशन ऑलरेडी चल रहा है दोनों देशों के बीच में, इंडिया और इजराइल के बीच में। हमारा जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, उस मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इजराइल की बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी काम कर रही हैं। इजराइल की जो टॉप कंपनीज हैं वो तो कर ही रही हैं, बट उसके जो नीचे जो टीयर टू की कंपनीज हैं और इंडिया की जो कंपनीज है जो डिफेंस प्रोडक्शन में है, उन सब के साथ में आपस में टाई अप है और इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं।
एक आखिरी क्वेश्चन केवल आपको पूछना चाहता हूँ कि भारत से कई जो कोचिनी, बगदादी और ज्यूस जो माइग्रेट करके यहाँ आए हैं, वे अभी भारत के एम्बेसडर के रूप में ही यहाँ काम कर रहे हैं, जिसमें बेन इजराइल भी शामिल है। तो पीपल टू पीपल कनेक्शन में आप क्या गुंजाइश देखते हैं कि और कल्चरल एक्सचेंजेस और कल्चरल टाइज को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है?
देखिए कि प्रधानमंत्री जब इसराइल के दौरे पे आएंगे तो 25 और 26 तारीख को वो उनको वो जो इजरायली इंडियन मूल के जो ज्यूश हैं, इजरायली ज्यूश हैं और जो वहां से यहाँ पे आए थे, उन सब से भी कुछ लोगों से उन सब से भी मुलाकात होगी। जो इसराइली ज्यूज हैं, जो इंडियन ओरिजिन के ज्यूज हैं, वो जब इंडिया से यहाँ पे आए थे तो बड़े पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ आए थे, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो इंडिया को आज भी उतना ही प्यार से याद करते हैं। और जैसे आपने कहा कि वो हमारे एम्बेसडर हैं, वो ब्रिज हैं हम दोनों के बीच में, वो पीपल टू पीपल और कल्चरल रिलेशन कैसे बढ़ा जाए उसमें उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। बहुत सारे जो ज्यूज हैं वो मुंबई से आए हैं, काफ़ी कोचीन से आए हैं, काफ़ी यू नो बिने मिनाशे कम्युनिटी से आए हैं और बगदादी ज्यूज आए हैं। जितने भी यहाँ पे ज्यूज आए हैं वो अभी भी इंडिया के साथ एक रिश्ता रखते हैं, और मैं ये मानता हूँ कि वो हमारे एम्बेसडर्स हैं यहाँ पे। मैं ये भी मानता हूँ कि वो हमारे कल्चरल और पीपल टू पीपल रिलेशन बढ़ाने में उनका बहुत ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण सहयोग है।
सिंह साहब, आपका अमूल्य समय देने और हमारी आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद।
भारत और इजराइल के संबंधों पर आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के विशेष संवाददाता धीरज एम काकड़िया की विशेष रिपोर्ट।
इजराइल में भारतीय समुदाय एक जीवंत और विविध समूह है, जिसमें लगभग 85,000 यहूदी भारतीय मूल के लोग और लगभग 18,000 से 20,000 भारतीय नागरिक विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इनमें से अधिकांश भारतीय यहूदी महाराष्ट्र, जिन्हें बेने इजरायली कहा जाता है, उसका मतलब होता है इजराइल के बच्चे। केरल से जो आए हुए हैं वो कोचिनी यहूदी माने जाते हैं और कोलकाता से आए हुए हैं यहूदी बगदादी यहूदी कहा जाते हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि ये लोग इराक और सीरिया से यहाँ माइग्रेट हुए थे। इसराइल में भारतीय यहूदी समुदाय जो है वो भारत के कल्चरल एम्बेसडर्स के रूप में यहाँ कार्य कर रहे हैं। इसराइल में भारतीय यहूदी समुदाय का इतिहास कई दशकों पुराना है। इनमें से अधिकांश लोग 1950 और 1960 के दशक में भारत से इसराइल चले आए थे। हालांकि विश्व के अन्य देशों में जो माइग्रेशन का स्टोरी होता है वो यहाँ पे नहीं है। जो ज्यूस लोग यहूदी लोग भारत से यहाँ आए हैं वो भारत की अपनी अच्छी यादों को साथ में लेकर आए हैं। वास्तव में 1948 में जब यहूदियों के लिए अपना होमलैंड अपना खुद का देश यहाँ बना इसराइल के स्वरूप में, तब उन लोगों ने सोचा कि हम अपने देश चला जाए। हालांकि भारत को भी वे अपना देश ही समझते हैं और भारत से अपने रिश्ते आज भी उन्होंने कायम करके रखे हैं। वो किसी तरह भी कड़वाहट को लेकर यहाँ पे नहीं आए हैं। वे इसलिए यहाँ नहीं आए हैं कि वहाँ दुखी थे, वे वहाँ बहुत सुखी थे, मगर इसलिए आए हैं कि ये ज्यूइश होमलैंड यानी यहूदियों का घर के रूप में इसराइल एक नया देश बना था। इसराइल के समाज में वे पूरी तरह से यहाँ एकीकृत हो गए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान भी कर रहे हैं। इसराइल में जो भारतीय नागरिक हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत है, जिसमें हेल्थ देखभालकर्ता के रूप में, केयर गिवर्स में, डायमंड के ट्रेडर्स हैं, आईटी पेशेवर में भी बहुत लोग हैं और यहाँ छात्र अभ्यास के लिए भी आते हैं। इसराइल की अर्थव्यवस्था में ये सब यहूदी और अन्य लोग महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और देश की सांस्कृतिक विविधता को भी बढ़ावा दे रहे हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान की अगर बात की जाए तो इसराइल में भारतीय समुदाय विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रदान करते हैं, कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें खास करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और ऐसे अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भारतीय यहूदियों साथ मिलकर करते हैं। और यहाँ पे भारत से लौटे जो यहूदियों हैं उनका एक गुट भी है, वो अपने भारत के साथ संबंध मजबूत बनाए रखना चाहते हैं और उनका यहाँ पे जो जैसे मराठी कल्चर है, बंगाली कल्चर है, उनको लेकर यहाँ पे कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं और भारत इजराइल के बीच संबंधों की मजबूती के लिए ये लोग लगातार कार्यरत रहते हैं। भारत और इजराइल के बीच संबंध 1992 से राजनीतिक संबंधों की स्थापना से लेकर अब तक हमेशा मजबूत बनते रहे हैं। दोनों देश रक्षा, कृषि, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित अन्य क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। इजराइल भारतीय पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है और हर साल 70,000 से अधिक भारतीय पर्यटक यहाँ इजराइल आते हैं और इजराइल की कई चीज जो है भारतीयों को बहुत पसंद भी आती है। भारत और इजराइल के बीच संबंध बनाने में वहां से यहाँ जो मुसलमान लोग आए हैं उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ एक इंडियन होस्पाइस यानी एक ऐसा देखभाल केंद्र चल रहा है जिसमें अगर किसी की हेल्थ को लेकर डॉक्टर ने उनको बता दिया है कि ये टर्मिनली इल है यानी उनका मृत्यु नजदीक में है, तो ऐसे लोगों को इमोशनली सपोर्ट करने के लिए यहाँ एक केंद्र बना है जिसका नाम है इंडियन होस्पाइस। इसी तरह और भी यही दोनों देशों के बीच कल्चरल टाइज को मजबूत करने के लिए कई तरह के यहाँ पे संस्थान भी चल रहे हैं और यहाँ पे उनके कार्यक्रम भी होते हैं। एक टेक्नोलॉजी को लेकर बात करना मैं चाहूंगा कि इसराइल की जो भी टेक्नोलॉजिकल संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, उनमें इन लोगों ने भारत कॉर्नर करके एक विशेष जगह के साथ साथ उनका जो सांस्कृतिक केंद्र बनाया है जिसको लेकर स्टूडेंट्स को भारत की विविधता के बारे में और टेक्नोलॉजिकल कोलेबोरेशन के बारे में उनको यहाँ बताया जाता है। तो भारत और इजराइल के संबंध इस सारे मायने को अगर देखें तो बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
ये रिश्ता सिर्फ दो देशों के बीच का नहीं है, ये नवाचार, विश्वास और साझा मूल्यों की साझेदारी है। रक्षा से विकास तक, खेत से लैब तक और रणनीति से मानवीय संबंधों तक, भारत और इजराइल मिलकर भविष्य की नई इबारत लिख रहे हैं।
अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी इसराइल यात्रा के संबंध में इसराइल में भारत के राजदूत जितेंद्र पाल सिंह के साथ आकाशवाणी विशेष संवाददाता धीरज काकड़िया की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
सुर्खियों में